તારીખ 13/5/1996 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 913 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 561
જાગ્રત ન રહે તો અવશ્ય નવા કર્મને બાંધે અને તેમાં પણ મુખ્ય અશાતા વેદનીને બાંધે. હિન્દી મેલેન એ પત્ર જો હૈ એક મુમુક્ષુ ભાઈ કો લિખા હૈ ઉનકો અશાતા કા ઉદય આયા થા और योग्यता अच्छी थी इसलिए आकुलता को नहीं भोगता था और शांत भाव से वो शाता के उदय को वेदन किया. इसलिए कृपालु देव को प्रमोद आया और उन्होंने इस विषय पर बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया. पहले उस विषय में मार्गदर्शन देकर के अब जो सभी ज्ञानियों ने जो उपदेश दिया है, जो शिक्षा दी है, वो वेदज्ञान विषय दिया है. वेद ज्ञान एक ऐसा इलाज है कि तीनों काल में जीव वेद ज्ञान करने से ही मुक्त होता है. समय सार में तो स्पष्ट वो बात आई 131 कलश में कि वेद विज्ञान तह सिद्धा सिद्धा ये के लगे जितने भी सिद्ध हुए हैं वो वेद ज्ञान से ही हुए. इस वेद ज्ञान के विषय में यहाँ जो पैराग्राफ है उसमें बहुत सुंदर वर्णन किया है कि वेद ज्ञान किस प्रकार से किया जाता है. वेद ज्ञान स्वयं विधि रूप है. विधि माने कार्य पद्धति. मुक्त होने के लिए यथार्थ कार्य पद्धति कैसे होनी चाहिए वेद ज्ञान की वो बात करते हैं. उपयोग लक्षण से सनातन स्फुरित ऐसा आत्मा को देह से तेजस और कार्बन शरीर से भी भिन्न अवलोकन करने की दृष्टि साध्य करके क्या करना चाहिए कि आत्मा कैसा है. कि तीनों काल सनातन मैंने तीनों काल उपयोग लक्षण से स्फुरायमान होता है. स्फुरित मैंने स्फुरायमान होता है. तीनों काल हर हमेश प्रति समय उपयोग लक्षण से आत्मा स्फुरायमान हो रहा है. स्वयं स्फुरायमान है वो. किसी के करने से नहीं है, आत्मा में ज्ञान का उपयोग स्वयं संचालित हो रहा है। तो उपयोग को आत्मा के रूप में देखना है, यानी आत्मा को उपयोग के रूप में देखना है, उपयोग सामान्य लेना है। भीतर में सूक्ष्म अनुभव दृष्टि से देखा जाए तो सबों को अपना उपयोग में अपना आत्मा वेदन रूप से अनुभव में आ ही रहा है। सत्रह अठारह गाथा की टीका में तो ऐसा कहा आचार्य श्री ने कि तुम तो स्वयं अनुभूति स्वरूप ही हो, जब उपयोग तीनों काल प्रति समय ज्ञान से स्फुरित हो ही रहा है, इसका मतलब कि तुम अपने आप को हर समय वेदन में आ ही रहा है, इसलिए तुम स्वयं अनुभूति स्वरूप हो। अनुभूति वो तो तुम्हारा स्वरूप है, परंतु शर्त उतनी है कि ये उपयोग लक्षण से जो स्फुरायमान हो रहा है, ऐसे आत्मा को अवलोकन में लेना चाहिए। कैसे अवलोकन में लेना चाहिए कि देह से और कार्मण और तेजस शरीर से मैंने सभी प्रकार के संयोगिक पुद्गलों से, ये तीनों प्रकार के पुद्गल आत्मा के संयोग में हैं, देह के परमाणु, कार्मण वर्गणा के परमाणु और तेजस वर्गणा के परमाणु, सभी परमाणु से भिन्न अवलोकन करना है। देह में रहने पर भी देह से भिन्न, देह में रहने पर भी देह से भिन्न है, वर्तमान में भी हमारा आत्मा देहातीत स्वरूप है, सर्वथा देहातीत स्वरूप है। देह प्रत्यक्ष जड़ है, मैं प्रत्यक्ष चैतन्य हूं, चैतन्य चैतन्य में चलता है, जड़ जड़ में परिणमता है, चैतन्य जड़ में परिणमन कर सकता नहीं, जड़ चैतन्य में परिणमन कर सकता नहीं। अवलोकन ऐसा होना चाहिए, अवलोकन में देखना भी है और अनुभव को देखना उसको अवलोकन कहते हैं। तो यहां ऐसा कहा कि तुम देखो, तुम अपने आप में देखो कि तुम ज्ञान वेदन से सभी प्रकार के संयोग में रहे हुए देहादि पुद्गलों से सर्वथा भिन्न हो। देखो अपने अनुभव को, मात्र ज्ञान से देखो, राग में भी, राग को भी साथ में नहीं लेना और संयोग को भी। फिर से उपयोग लक्षण से सनातन सुरीत में उपयोग द्वारा प्रति समय मुझे अपने आप को अनुभव करता हूं, वेदन में लेता हूं और वो वेदन में मालूम पड़ता है कि देह से, तेजस से और कार्मण शरीर से मैं भिन्न हूं। ऐसा अवलोकन करने की दृष्टि मैंने, दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट, या दृष्टि मैंने दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट, उसको साध्य करना। साध्य करना इसलिए कहा है कि अभी तक अनंत काल से ऐसा दृष्टिकोण को साधा नहीं है। एक प्रश्न अवश्य हो सकता है कि ऐसा दृष्टिकोण कैसे साध्य करें, कैसे साध्य करें। तो उस वचनाम, इस वचनामृत में भी इसका उत्तर गर्भित है। अवलोकन के दृष्टि साध्य करना, मैंने अवलोकन करते रहना, अवलोकन करने का प्रयास करना और बार बार अवलोकन करते रहना। इससे अवलोकन का दृष्टिकोण प्राप्त होता है, भिन्न अवलोकन का। अवलोकन तो जीव करता ही है, अवलोकन करना मैंने अनुभव को समझना। तो अनुभव तो हो ही रहा है, उल्टा अनुभव नहीं हो रहा है क्या?
हो रहा है।
तो मुझे गर्मी लग रही है, ये उल्टा अनुभव है। मुझे गर्मी लग रही है तो उल्टा अनुभव है। ज्ञान वेदन में देखा जाए तो गर्मी का प्रवेश नहीं, और ज्ञान वेदन का भी गर्मी में प्रवेश नहीं। गर्मी क्या चीज है? ये परमाणु की उष्ण पर्याय है, जो वातावरण है, वातावरण के परमाणु की उष्ण पर्याय को कहते हैं गर्मी। क्या वो ज्ञान में प्रवेश करते है, करता है परमाणु?
नहीं।
परमाणु और परमाणु की पर्याय ज्ञान में तो आता नहीं, प्रवेश नहीं होते। परंतु उससे अभिन्न होने का दृष्टिकोण अनादि से जीव के परिणमन में चल रहा है। जो भिन्न है, भिन्न है उसके साथ अभिन्नता का, अभिन्नता की साधना हो रही है। है भिन्न और अध्यासित भाव से, मिथ्या भाव से, झूठा भाव से उनको अपने में अनुभव करता है। मुझे लगती है गर्मी, मुझे लगती है गर्मी। जानने में अवश्य आती है कि तीव्र है या मंद है, लेकिन जीव में प्रवेश नहीं। प्रवेश तो नहीं, स्पर्श भी नहीं। परमाणु में स्पर्श गुण है इसलिए गर्म होता है। गर्मपना, ठंडापना वो स्पर्श गुण की अवस्था है, पर्याय है। परंतु जीव उसमें कोई स्पर्श गुण नहीं है, इसलिए वो किसी को स्पर्शता नहीं, जीव किसी को स्पर्शता नहीं, लेकिन स्पर्श का ज्ञान कर सकता है। स्पर्शता नहीं लेकिन स्पर्श का ज्ञान होता है, उतना जरूर है। तो यहां उतना करना है कि जो भिन्न है उसको भिन्न अनुभव करना है, और भिन्न का भिन्न रूप से अवलोकन करना, अवलोकन करने का प्रयास करना और बार बार अवलोकन करना, यही एकमात्र इसका इलाज है, और दूसरा कोई इसका इलाज नहीं है। क्योंकि ये पत्र अशाता का चला है ना, इसलिए देह से बात शुरू कर दिया है। अशाता वेदनी भी देह की अवस्था है, अशाता वेदनी भी देह की अवस्था है, अशाता वेदनी जीव की अवस्था नहीं है। जीव को न शाता होती है न अशाता होती है। क्या कहते हैं आगे देखो, कि वह चैतन्यात्मक स्वभाव आत्मा निरंतर वेदक स्वभाव वाला होने से अबंध दशा को संप्राप्त न हुए वहां तक शाता और अशाता रूप अपने को अनुभव में वेदन के बिना रहने वाला नहीं है। अशाता का वेदन करना किसी को अच्छा नहीं लगता, वो पीड़ा है और पीड़ा को कोई पसंद नहीं करता। लेकिन अगर जीव अपना ज्ञान वेदन में न रहे तो वेदन करना वो ज्ञान का स्वभाव होने से वो अशाता को वेदन किया बिना रहेगा, और वो बात सबको प्रत्यक्ष अनुभव रूप है कि जब अशाता वेदनी का उदय आता है, पीड़ा होती है, और नहीं चाहते हुए भी उपयोग उसमें लगा रहता है, ये पीड़ा मुझे हो रही है और ये पीड़ा मुझे नहीं चाहिए, लाख नहीं चाहे तो भी उपयोग वहां से हटता नहीं, खिसकता नहीं। क्यों? कि या तो ज्ञान वेदन में रहे या तो साता साता के वेदन में, तीसरी कोई स्थिति है ही नहीं। इसलिए अगर साता असाता के वेदन की पीड़ा से छूटना हो तो ज्ञान वेदन में आना चाहिए, और ज्ञान वेदन में रहना यही भेद ज्ञान की फलश्रुति है। भेद ज्ञान करने से प्राप्त क्या करना है? कि ज्ञान वेदन में रहना है। ज्ञान वेदन में रहने से साता साता का वेदन नहीं होगा, ज्ञान होगा, असाता का उदय होगा तो असाता का ज्ञान रहेगा, और साता के उदय काल में साता का ज्ञान होगा। लेकिन मेरे में ऐसा ज्ञान नहीं आएगा, वो भिन्न ज्ञान वेदन और साता असाता से भिन्न ही अपने को वेदन करता है, साता असाता को जानता है, वो भी मेरे में नहीं है ऐसा जानता है। जब जीव कोई जीव ज्ञान वेदन में रहता है तो असाता के उदय में भी असाता का वेदन मेरे में नहीं है ऐसा जानता है। अगर ज्ञान वेदन में नहीं रहता है तो असाता का वेदन मेरे में है ऐसा जानता है, जो गलत है, मिथ्या है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए जो ज्ञानी हुए उनको भी साता असाता का उदय तो आता है, लेकिन वो अपने ज्ञान वेदन को वेदने के लिए उस वक्त अधिक पुरुषार्थ कर में आ जाते हैं, अधिक पुरुषार्थ उनसे हो जाता है, हो जाता है, उसको कहते हैं कि करते हैं, और उस वक्त असाता का वेदन आत्मकल्याण में अधिक निमित्त पड़ता है। या तो असाता का वेदन को आत्मकल्याण में निमित्त करके ले जाओ, या नया पूर्व नया कर्म बंध के निमित्त में ले जाओ, उदय तो उदय है। वो आए होंगे, वनमाली दास भाई की भूमिका कोई अच्छी होगी, इसलिए ये पत्र में ये भाव निकले हैं। ज्ञानी का उपदेश होता है वो पात्र अनुसार होता है, ये तो व्यक्तिगत बात है, इसलिए पात्रता होवे तभी ऐसा भाव निकले, समष्टिगत उपदेश होवे तो भी पूरी धर्म सभा में अच्छे पात्र होवे तो ही अच्छा भाव निकले। सब अच्छे पात्र नहीं हो सकते, सबों की योग्यता अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक दो चार तो अच्छे पात्र हुए तभी अच्छे भाव निकलेंगे। जैसे तीर्थंकर की सभा में बिना गणधर वाणी चलती, दिव्य ध्वनि नहीं चलती, जबकि तीर्थंकर देव पूर्ण वितराग होने से उनको वाणी की इच्छा नहीं है, और पात्र देख करके मैं बोलूं वो भी इच्छा विकल्प नहीं है, फिर भी एक कुदरती व्यवस्था है के उत्कृष्ट पात्र हुए बिना तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि प्रकट होती नहीं। ऐसा क्यों? कि उत्कृष्ट में उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान तक का उपदेश वो वाणी में आता है, एक जघन्य पात्रता से लेकर के 12वां गुणस्थान में 13वें गुणस्थान में जो शुक्ल ध्यान चलता है उसका उपदेश भी दिव्य ध्वनि में आता है। जब वो ऊपर का उपदेश आता है सूक्ष्माते सूक्ष्म भाव, तो सामने भी उसको झेलने वाला तो चाहिए ना, ये कुदरती व्यवस्था है। ऐसे गुरुदेव की सभा में समष्टिगत उपदेश चलता था, व्यक्तिगत उपदेश नहीं देते थे, तो भी अच्छे ज्ञानी पात्र उसमें विराजमान रहते थे तो उपदेश निकलता था। उपदेश देने वाला तो उपकारी है ही श्री गुरु, लेकिन जिसके निमित्त से ये उपदेश चलता है, ऐसे उच्च कोटि के ज्ञानी हो पात्र हो वो भी दूसरों के लिए उपकारी होते हैं। एक का उपकार नहीं है, दो दो का उपकार है। ऐसे यहां भी ये पत्र में ऐसी सूक्ष्म बात चली है, ऐसी सूक्ष्म बात दूसरे एक भी पत्र में नहीं चली है, सारे ग्रंथ में एक जगह ये बात आई है, ऐसी बात दूसरी जगह कहीं नहीं आई है, बहुत व्यवस्थित आई है। हाँ, सामान्य भावनों सामान्य ज्ञान का आविर्भाव करके ये बात उसमें गर्भित है, के स्वरूप लक्ष्य हुए बिना ज्ञान सामान्य का आविर्भाव होता नहीं है। तो स्वरूप लक्ष्य पूर्वक ये सब्जेक्टिव कंडीशन, स्वरूप को लक्ष्य में लेकर के स्वरूप लक्ष्य से जो ज्ञान स्फुरित होता है उसमें सामान्य ज्ञान का आविर्भाव हो जाता है। स्वरूप लक्ष्य खुद ही ऐसा है, क्यों? तो स्वरूप स्वयं सामान्य स्वरूप है। स्वरूप कैसा है?
सामान्य
स्वरूप है। उसके लक्ष्य से क्या होगा कि ज्ञान का भी सामान्य अंग है वो आविर्भूत हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक है। और जिसके लक्ष्य में स्वरूप है वो परिणमन में विधि को कार्य पद्धति को संभालता है तो ज्ञान सामान्य का आविर्भाव करता है, उसको अपना पूरा स्वरूप का लक्ष्य रहा करता है। दोनों एक साथ होता है, दोनों लक्ष्य का और विधि की प्रक्रिया का, प्रोसेस का एक साथ काम चलता है। जैसे कैसे एक साथ चलता है कि हम पैदल घर जा रहे हैं, मंदिर से निकले सब लोग अपने अपने घर जाएंगे, कोई कहाँ रहता है, कोई इधर कोई उधर कोई उधर, हाँ। लक्ष्य कहाँ है सबों का? अपने घर जाने का। ये रात्रि हो गई है, स्वाध्याय पूरा हुआ, अब घर जाके सो जाएंगे। लक्ष्य में घर जाना है और प्रोसेस क्या है? रास्ते पे चलना है। हर कदम में हम वो देखते हैं कि कहीं खड्डे में गंदगी में हमारे पैर नहीं पड़े, चलते चलते हम किसी से टकराएं भी नहीं, न कोई व्यक्ति से न कोई वाहन से। आने जाने वाले मिलेंगे लेकिन हम सावधानी से चलेंगे, रास्ते में खड्डा भी आएगा, गंदगी भी होगी, कुछ भी होगा, हम सबको तैर करके चलेंगे। तैर करके चलना वो प्रोसेस है और लक्ष्य में किस दिशा में चलना वो बात हमेशा रहती है कि जहां हमारा घर है उसी दिशा में हमको आगे बढ़ना है। दो बात ज्ञान में साथ में रहती है, लक्ष्य वाला भी ज्ञान है कि अपना घर घर की ओर जाना है और कैसे चलना, किस तरह से चलना कि जिससे हम सही सलामत रूप से अपने घर पहुंच जाए। वैसे लक्ष्य में अपना आत्मा और परिणमन की प्रवृत्ति में भेद विज्ञान, क्यों? कि हमारा परिणमन वही हमारी चाल है और हमारे सामने जो भी ज्ञेय आता है वही हमारा ट्रैफिक है। ट्रैफिक दो तरह का हमारे सामने देखने में आता है, एक तो अनेक प्रकार के विभाव भाव भी ट्रैफिक है और अनेक प्रकार के उदय प्रसंग भी ट्रैफिक है। दोनों से तैर करके हमें चलना है, हमें किसी के साथ टकराना नहीं है। विभाव से भी नहीं और किसी पुद्गलों से भी नहीं या किसी जीव से भी नहीं। उस तरह से सही सलामत रूप से हम हमारे स्वरूप में चलते रहें, स्वरूप में ही चलें तो हमें किसी भी प्रकार वो ट्रैफिक से कोई लेना देना
नहीं है।
असाता असाता में मेरा ज्ञान वेदन मेरे स्वरूप में, मेरे ज्ञान में, बात खत्म। સતને સંબંધ ક્યારે કરે છે? અબંધ દિશા કો સંપ્રાપ્ત નહીં હોવે તો યા તો જીવ સ્વરૂપ સે સંબંધ કરેગા યા તો જીવ સાતા સાતા સે સંબંધ કરેગા. તો સ્વરૂપ કો સંબંધ નહીં કરેગા વહાં તક સાતા સાતા કો સંબંધ કરે વિના રહેગા નહીં. ઓર સાતા કો ભોગેગા જિસકા ફલ દુઃખ હૈ આકુલતા હૈ નહીં ચાહતા હૈ ફિર ભી ભોગના પડતા હૈ ક્યોંકિ સ્વરૂપ કા સંબંધ કરતા નહીં હૈ. ઇસલિયે પહેલે વો બાત લિયા કે દેહ સે ઓર કારમણ પરવર્ગણા સે ભી ભિન્ન અપને આત્મા કો અવલોકન કરને કી દ્રષ્ટિ સાધ્ય કરના. કિસકે માધ્યમ સે? કે ઉપયોગ લક્ષણ સે. કૈસા હૈ ઉપયોગ લક્ષણ? તો વો તો સનાતન સ્ફુરાયમાન હો રહા હૈ. ઇસકા મતલબ વો હુઆ કે ઉપયોગ લક્ષણ હૈ વો સાધન હૈ ઓર વો સાધન સનાતન સ્ફુરિત હૈ. વો સાધન કભી ભી અનુપસ્થિત નહીં હૈ કે તુમકો ઇંતજાર કરની પડે કે વો ઉપયોગ મિલે તબ તો મેં પકડું ને. વો તો પ્રતિ સમય અંદર સે જ્ઞાન કી જ્યોતિ પ્રગટ હોઈ રહી હૈ. સભી આત્માઓ મે જ્ઞાન કી જ્યોતિ હંમેશા હંમેશા પ્રજ્વલિત હોઈ રહી હૈ. ઉસકો વો ભિન્ન હૈ, વો ભિન્ન હી હૈ. ભિન્ન કો ભિન્ન દેખો. ભિન્ન હૈ એસા ભૂલ ગયા હૈ તો ભિન્ન હોને પર ભી અભિન્ન રૂપ સે દેખ કરકે દુઃખ કા અનુભવ કરતા હૈ. યહી અજ્ઞાન હૈ, યહી મિથ્યાત હૈ ઓર યહી અનંત સંસાર કે પરિભ્રમણ કે દુઃખ કા કારણ હૈ. કાર્ય તો ઉતના હી હૈ કે ભિન્ન કો ભિન્ન રૂપ મે અવલોકન કરો, બસ બચ જાઓગે સભી પ્રકાર કે દુઃખ સે ઓર જન્મ મરણ સે ભી બચ જાઓગે. આત્મા એટલે નહી, આત્મા એટલે આત્મા, પોતાનો આત્મા. હમણાં ભેદ જ્ઞાનના સ્ટેજમાં આવેલા જીવની વાત છે. જે મુમુક્ષુ જીવ ભેદ જ્ઞાનમાં આવ્યો છે એને ઉપદેશ આપે છે. મનમાળી દાસભાઈ કરકે તું મુમુક્ષુ હૈ, અસાતા વેદની કે ઉદય મેં આયે હુએ હૈ, ભેદ જ્ઞાન કરતે હોંગે, વિજ્ઞાન કે પ્રયોગ કે સ્ટેજ મેં આયે હોંગે, ઉનકે પર ઉપકાર કર રહે હૈ. અવલોકન કે સ્ટેજ મેં આતા હૈ ઓર અવલોકન સતત ચલને સે વો વેદ જ્ઞાન મેં પ્રવેશ કરતા હૈ. અવલોકન જો કરતા હૈ, જો અપને પરિણામો કા અવલોકન કરતા હૈ, ઉસમે ઉપયોગરૂપ પરિણામ ભી હૈ, અનેક પ્રકાર કે રાગાદિ વિભાવ ભી હૈ પરિણામ મેં ઓર ઉપયોગરૂપ ભી પરિણામ હૈ. અબ અવલોકન કરના હૈ તો એક દ્રષ્ટિકોણ, એક ઉદ્દેશ કો સાધ્ય કરકે ભિન્ન રૂપ અવલોકન કરો. જો ભિન્ન હૈ ઉસકો ભિન્ન રૂપ અવલોકન કરો. જૈસે હમ કોઈ નમકીન ખાતે હૈ, નમકીન મેને ફરસાણ યા સબ્જી યા દાલ કુછ ભી જિસમે નમક ડાલા હુઆ હૈ, એસે નમકીન પદાર્થ કો ખાતે હૈ, ખાને કો વૈસે તો હમ ખાતે હૈ તો સભી પ્રકાર જીતને ભી ઉસમે સ્વાદ ડાલે હૈ એક સાથ સ્વાદ મેં લે લેતે હૈ અભેદ રૂપ સે. ઉસમે તો નમક ભી ડાલા હૈ, મિર્ચ ભી ડાલા હૈ, ખટાઈ ભી ડાલી હૈ ઓર ગુડ આદિ મીઠાઈ ભી ડાલી હૈ. अनेक प्रकार के स्वाद आते हैं ऐसे पदार्थ एक व्यंजन में, एक व्यंजन मैंने खाने का पदार्थ एक व्यंजन में हम डालते हैं और खाते हैं तो एक साथ समूह का अभेद स्वाद लेते हैं और चखते हैं तो अभेद स्वाद नहीं लेते हैं। जब हम चखते हैं सैंपल लेकर के तब हम दूसरे स्वाद को साइड ट्रैक में ले जाते हैं गाउन करके और अकेला नमकीन को देख लेते हैं, परखते हैं कि नमकीन का प्रमाण ठीक है या कम कम है या बेसी है, ज्यादा कम है, क्या बात है। उस वक्त दूसरे स्वाद अपना स्वाद को छोड़ते तो नहीं दूसरे पदार्थ, फिर भी ज्ञान में हम उसको छोड़ सकते हैं। ऐसे हमारे ज्ञान में ज्ञान भी वेदन में आता है और साता असाता दोनों, ज्ञान विशेष में साता असाता का प्रतिबिंब आता है और ज्ञान सामान्य में साता असाता का प्रतिबिंब नहीं आता। हम ज्ञान सामान्य को मुख्य करें, भिन्नता का उद्देश्य को धारण करके या अकेले ज्ञान को अनुभव करने का उद्देश्य को धारण करके, वहां भी चखने में क्या करते हैं, वो एक उद्देश्य को धारण कर लेते हैं कि हमें अकेला खारापन को ही देखना है। उस वक्त हमको तीखापन को या खट्टापन को देखना नहीं है, होने पर भी नहीं देखते हैं, होने पर भी नहीं देखते हैं, मुख्य गौण कर सकते हैं। तो यहां भी हमको साता असाता भी दिखने में आती है और ज्ञान वेदन भी दिखने में आता है। अगर साता असाता को मुख्य करते हैं तो ज्ञान वेदन वेदन गोचर नहीं होता है। अब ज्ञान वेदन को मुख्य करेंगे तो साता असाता वेदन गोचर नहीं होगी, क्यों कि साइंटिफिक पोजीशन ऐसी है कि एक को वेदन में ले सकते हैं दो को वेदन में ले सकते नहीं है, दो को वेदन कर ही नहीं सकते। वास्तव में तो पर का वेदन कर ही नहीं सकते लेकिन अध्यास भाव से वेदन होता है, वो अध्यास है। या तो अध्यास भाव से साता असाता को भोगो या तो वास्तविक ज्ञान से अपने ज्ञान को भोगो, निराकुलता को भोगो, ज्ञान की निराकुलता को देख लो क्या करना है। तो अनादि से साता असाता को भोगने की आदत तो हमारी बन चुकी है, उसमें तो कोई सीखने की सिखाने की बात नहीं है। परंतु भिन्न ज्ञान वेदन कभी हमने किया नहीं और उस प्रकार की कार्य पद्धति से हम अब तक अनजाने रहे हैं, ये हमारी हालत है। इसलिए ज्ञानी गुरु अपने को करुणा करके दुखी दुख से छुड़ाने के लिए ये कार्य पद्धति समझा रहे हैं। देखो तुम्हारा ज्ञान तो भिन्न ही रहता है, ज्ञान कभी साता असाता से मिला हुआ हुआ ही नहीं है, मिला ही नहीं है कभी। भिन्न को भिन्न रूप जहां तक नहीं अवलोकन करो वहां तक अवलोकन करने की कोशिश करो, प्रयास करो, वो प्रयास के पीछे लगे रहो, अब शिकारी होगा। इस मार्ग में तो जो उद्यम करता है उनको सफलता अवश्य मिलती है, गारंटेड। जो उद्यम नहीं करता है उनको तो कहां से काम होगा, लेकिन जो पुरुषार्थ करता है उद्यम करता है उनको अवश्य कार्य सिद्धि होती ही है, ऐसा अनुभव से अनुभवियों ने कहा है। इसलिए एक आशास्पद परिस्थिति है कि जिसमें निराश होने की कोई गुंजाइश नहीं है, अवकाश ही नहीं है निराश होने, उत्साहित वीर्य से काम करो, अवश्य आपका कार्य होगा होगा और होगा। और ऐसे महान पुरुष कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, देखिए ये सब बात बता रहे हैं, इसलिए ऐसे अच्छे साथीदार भी मिलते हैं इस मार्ग में, फिर निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। निराश क्यों होना, जब सब प्रकार का सुविधा युक्त परिस्थिति में हम आए हुए हैं, मनुष्य भव मिला, जैन धर्म मिला और महात्माओं के ऐसे प्रयोजनभूत वचन भी मिले, कथन भी मिले, सत्संग भी मिला, अब क्या मिलने में बाकी रहा है? हाँ? क्या सब अवसर आ चुका है, मैं सब अवसर आ चुका है, कोई कसर नहीं है। कोई ऐसा बोल सकते हैं कि भाई क्या करे, आधे व्याधि उपाधि से घिरे हुए रहते हैं, तो वो तो अभिन्नपना माना है, तो आधे व्याधि उपाधि आत्मा में तो आती नहीं है, लेकिन हम अभिन्नपना मान रखा है तो आधे व्याधि उपाधि आएगी, भिन्न है उसको भिन्न देखो तो आधे व्याधि उपाधि जैसी कोई चीज ही है नहीं, वो कल्पना मात्र है, वो तो जीव की कल्पना मात्र है और कुछ नहीं है। उपाधि क्या चीज है, व्याधि आधे व्याधि उपाधि क्या चीज है कि जीव की कल्पना और कुछ नहीं है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है, कोई दम नहीं है, जाओ। क्यों कि तीनों काल में हर हालत में जो काम करता है उसमें आधे व्याधि उपाधि उसको रोक सकते, विषय तो सूक्ष्म और भी है, कल के स्वाध्याय में चलेगा।